लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
फ्रेटेली ए सोरेल्ले, बोनजोर्नो। ला लेटेरा आई गालाती रिपोर्टा उन फैक्टो प्यूटोस्टो सरप्रेंडेंटे।
भाइयों एवं बहनों सुप्रभात। गलातियों के नाम पत्र हमारे लिए एक आश्चर्यजनक तथ्य को प्रस्तुत करता है। हमने सुना कि पौलुस केफस या पेत्रुस को अंताकिया समुदाय में फटकारते हैं क्योंकि उनके आचरण उतने उचित नहीं थे। ऐसा क्या गंभीर हुआ था जिसके कारण उनके लिए कठोर शब्द कहने पड़े? शायद पौलुस अपने आप से बाहर हो जाते और अपने को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं, परंतु संहिता और स्वतंत्रता के संबंध में खतरे की बात आती है। पौलुस गलातियों के समुदाय को लिखते हुए जानबूझकर उस घटना की चर्चा करते हैं जो एक साल पहले अंताकिया में घटित हुई। वे वहाँ के ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात की याद दिलाना चाहते हैं कि वे उन उपदेशकों की बातों को किसी भी रूप में ना सुने जो उन्हें खतना की आवश्यकता पर प्रवचन देते हैं। पेत्रुस के संदर्भ में यहाँ हम भोजन ग्रहण करने के संबंध में उनके आचरण को देखते हैं। एक यहूदी के लिए गैर यहूदियों के साथ बैठकर भोजन करना मना था, लेकिन पेत्रुस यह जानते हुए भी कि वह संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, शतपति कॉर्नेलियस के घर गया। ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध या अपवित्र नहीं कहना चाहिए। यरूशलेम लौटने पर वे ख्रिस्तीय जो खतना किए गए थे, जो मूसा की संहिता का अनुपालन विश्वासी ढंग से करते थे, पेत्रुस को उनके व्यवहार के कारण भला बुरा कहते हैं। उन्होंने यद्यपि इस बात की सफाई देते हुए कहा, उस समय मुझे प्रभु का यह कथन याद आया, योहन जल से बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? कुछ ऐसे ही घटनाएं पौलुस की उपस्थिति में अंताकिया में घटित हुई थीं।
प्रिमा पेत्रो स्टावा मेंसा सेंसा अल्कुना डिफिकल्टा कोन आई क्रिस्टियानी वेनुटी दल पगानेसिमो।
पहले पेत्रुस को गैर ख्रिस्तीय से ख्रिस्तीय बने लोगों के संग बैठकर खाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, यद्यपि जब कुछ खतना कराए ख्रिस्तीय यरूशलेम से उस शहर में आए तो पेत्रुस ने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि वह उनकी आलोचना का शिकार होना नहीं चाहता था। संत पापा ने कहा कि हमें यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है कि दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहने हेतु हम सच्चाई का परित्याग करते हैं। संत पौलुस के नजरों में यह गंभीर बात थी क्योंकि दूसरे शिष्यगण भी पेत्रुस का अनुसरण कर रहे थे, विशेष रूप से बरनाबस जो गलातियों के समुदाय में सुसमाचार प्रचार कर चुका था। अनजाने में थोड़ा इधर और थोड़ा उधर होते हुए पेत्रुस समुदाय में एक तरह से विभाजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। संत पापा ने कहा कि पौलुस अपने फटकार में एक शब्द का उपयोग करते हैं जो हमें पाखंडता पर विचार करने को मदद करता है। यह वह शब्द है जो कई बार हमारे लिए आएगा। हम सभी इसे समझते और इसका अर्थ जानते हैं।
L'osservanza della legge da parte dei cristiani portava a questo comportamento ipocrita.
संहिता का अनुपालन ख्रिस्तियों को पाखंडतापूर्ण व्यवहार हेतु अग्रसर करता है, जिसके विरुद्ध प्रेरित अपनी सारी शक्ति और दृढ़ता से संघर्ष करते हैं। पौलुस अपने में धर्मी व्यक्ति था, वहीं उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उनका व्यवहार विचित्र था, लेकिन वह धर्मी व्यक्ति था। संत पापा ने कहा कि पाखंडता क्या है। जब हम यह कहते कि सावधान, वह व्यक्ति पाखंडी है, तो इसका अर्थ क्या है?
Si può dire che paura per la verità.
हम कह सकते हैं यह सच्चाई से भयभीत होना है। पाखंडी सच्चाई से डरता है। आप अपने उस रूप को दिखाते हैं जो आप नहीं हैं। यह अपने हृदय को झूठी चीजों से भरना है। यह अपने हृदय के मनोभावों की लीपापोती करना है। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने को प्रस्तुत करना मुझे भयभीत करता है। अपने मनोभावों के संबंध में हम बनावटी बातें धारण करते हैं। संबंध का टूटना हमें सच्चाई को खुलकर बोलने हेतु साहसिक होने नहीं देता है, और इस भांति हम सदैव सच्चाई से भागते हैं, सभी जगह और सभी चीजों के बावजूद। संत पापा ने कहा कि संबंध का टूटना हमें अधूरी सच्चाई की ओर ले चलती है, और अधूरी सच्चाई अपने में एक विखंडन है, क्योंकि सत्य अपने में सत्य है अथवा वह सत्य है ही नहीं। अधूरी सच्चाइयां अपने में झूठे कार्य हैं। ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति अपने में दिखावा करता है। संबंध टूटने का भय उसे साहसिक होने से रोकता है, फलस्वरूप वह खुले रूप में सच्चाई को नहीं कह पाता है। इस भांति हम अपने उत्तरदायित्व से बचते हैं, और यही कारण है यह हमारे लिए एक आज्ञा बनती है, जहां हमें सदैव सत्य बोलने को कहा जाता है, सभी जगह और सारी चीजों के बावजूद। अपने दैनिक जीवन के व्यक्तिगत संबंधों में औपचारिकता के आधार पर पाखंडता रूपी कीटाणु सहज ही हम में फैल जाता है। यह एक हंसी के रूप में हमारे मुख से निकलती है, जो हृदय से नहीं होती, जो सबों से सहज होने का प्रयास करती लेकिन किसी से सहज नहीं हो पाती है। संत पापा ने कहा,
Nella Bibbia si trovano diversi esempi in cui si combatte l'ipocrisia. Una bella testimonianza per combattere l'ipocrisia è quella del vecchio Eleazaro.
धर्म ग्रंथ में पाखंडता के कई उदाहरण हैं। एक सुंदर साक्ष्य हम बुजुर्ग एलियाजार के रूप में पाते हैं, जिसे देव मूर्तियों को चढ़ाया गया सुअर का मांस खाने को कहा जाता है, जिससे उसकी जान बच सके। वह मांस खाने का दिखावा करता है, लेकिन उसने सुअर का मांस नहीं खाया, बल्कि उसके मित्रों ने उसके लिए किसी दूसरे जानवर का मांस तैयार किया था। ईश्वर भक्त पुरुष उत्तर देता है, मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत से युवक यह समझें कि एलियाजार ने 90 वर्ष की आयु में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है, यदि मैं इसे बचाने के लिए इस प्रकार सम्मान करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरा वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। वह ईमानदार रहता और पाखंडता के मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। यह पाखंडता पर विचार करते हुए उसे दूर करने हेतु हमारे लिए कितना सुंदर उदाहरण है। सुसमाचार में यीशु बहुत सारी परिस्थितियों में बाहरी दिखावे पाखंडता की निंदा करते हैं, जो आंतरिक रूप में झूठ और बुराइयों से भरा है।
L'ipocrita è una persona che finge, lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera sul volto e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità.
पाखंडी लोग दिखावा करते हैं, चापलूसी करते और धोखा देते हैं, क्योंकि वे अपने चेहरे पर मुखौटा पहने हुए रहते और सच्चाई का सामना साहस से नहीं कर पाते हैं। यही कारण है वे सच्चे रूप में प्रेम करने के योग्य नहीं होते। वे अपने अहम में ही सीमित होकर रह जाते और उनमें अपने हृदय को पारदर्शी बनाने की शक्ति नहीं होती है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहां हम पाखंड को क्रियाशील पाते हैं। यह हमारे कार्य क्षेत्र में है, जहां कोई अपने सहकर्मियों से मित्रता के भाव दिखलाता, वहीं प्रतियोगिता की भावना में उन पर पीछे से वार करता है। राजनीति में हम पाखंडता को पाते हैं, जहां लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, लोगों के बीच अलग जीवन और व्यक्तिगत जीवन में एक अलग जीवन। कलिस्सा में पाखंडता विशेष रूप से घृणित है, और दुर्भाग्यवश कलिस्सा में हम पाखंडता को पाते हैं। बहुत से ख्रिस्तीय और प्रेरित पाखंडी हैं। हम प्रभु के वचनों को कभी ना भूलें। जो आप कहते हैं वह केवल हाँ या नहीं हो, इससे बढ़कर कुछ भी बुराई से आती है। भाइयों और बहनों, आइए आज हम इस बात पर चिंतन करें कि पौलुस किस बात की निंदा करते हैं। यह पाखंडता है जिसकी निंदा यीशु करते हैं।
Non abbiamo paura di essere veritieri, di dire la verità, di sentire la verità, di conformarci con la verità, così potremo amare.
हम सत्य से, सच बोलने से, सच सुनने से, सच्चाई में चलने से ना डरें, जिससे हम प्रेम कर सकें। एक पाखंडी प्रेम करना नहीं जानता है। सत्य के साथ तोल मोल करने का अर्थ है कलीसिया की एकता को खतरे में डालना, जिसके लिए स्वयं प्रभु ने प्रार्थना की। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु, सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु, वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता, जीवन येसु, प्रियतम।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों एवं इटली में 5 साल पहले आए भयंकर भूकंप के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, आशा एवं साहस के साक्ष्य के लिए धन्यवाद। वास्तव में खेल के प्रति प्रतिबद्धता दुर्गम कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। संत पापा फ्रांसिस ने 24 अगस्त 2016 में इटली के मोंटेगालो शहर के निकट आए भूकंप के शिकार लोगों की भी याद की। 6.2 की तीव्रता से आए भूकंप में करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। साथ ही घरों एवं संपत्ति की भी भारी क्षति हुई थी। संत पापा ने इटली के विश्वासियों को संबोधित कर कहा, आपकी उपस्थिति मुझे मध्य इटली के पीड़ितों एवं समुदायों की याद करने का अवसर दे रहा है, जिसमें अकुमोली और अमात्रिचे प्रमुख थे, जिन्होंने भूकंप के परिणाम को दुखद तरीके से झेला। संत पापा ने इस बात को रेखांकित किया कि अविश्वास को रास्ते पर आने दिए बिना एवं संस्थाओं की ठोस मदद द्वारा त्रासदी से पुनः उठना कितना महत्वपूर्ण है। टोक्यो में मंगलवार को पैरालंपिक खेल का उद्घाटन किया गया। खेल की जिम्मेदारी के साथ संस्कृति के लिए गठित परमधम पीठ समिति के उप सचिव मोन्सिनियोर मेल्क्योर संकेस्ती तोका ने कहा कि खेल आशा का एक महान चिन्ह है, क्योंकि यह कई दिव्यांग लोगों को प्रेरित कर सकता है। आयोजकों का कहना है कि खेल बहुत कठिन परिस्थिति में खेला जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त को ओलंपिक खेल शुरू होने के बाद कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 के उन्हीं निर्देशों का पालन किया जाएगा जिनका पालन ओलंपिक के दौरान किया गया था। पैरालंपिक खेल की शुरुआत मंगलवार 24 अगस्त को हुई और इसका समापन 5 सितंबर को होगा। इस बार भी दर्शकों के बिना ही खेला जाएगा और खिलाड़ियों से कहा गया है कि वे अधिक घूमने का प्रयास ना करें। संत पापा फ्रांसिस की ओर से दिए गए समर्थन की याद करते हुए मोन्सिनियोर संकेस्ती तोका ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस पैरालंपिक एथलीट के महान समर्थक हैं तथा 2016 में उन्होंने रियो खेल में भाग लेने वालों को संबोधित किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बोर्ड का भी स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि संत पापा की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है समावेश। खेल सभी के लिए है और इसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग भी भाग ले सकते हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों खेलों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों पर कोविड-19 महामारी द्वारा बरपाई गई बाधा को ध्यान देते हुए मोन्सिनियोर संकेस ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए महामारी के कारण होने वाली उथल पुथल उनके लिए दोहरे रूप से मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे और उनका परिषद पैरालंपिक खेलों को बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये कई दिव्यांग लोगों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। भारत के ख्रिस्ते 25 अगस्त को कंधमाल दिवस मनाते हैं, जब ओडिशा में 2008 को ख्रिस्ते विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। भारत के राष्ट्रीय एकात्मकता मंच ने 25 अगस्त को कंधमाल दिवस के अवसर पर भारत के ख्रिस्तों के खिलाफ 13 साल पहले हुए हिंसक आक्रमण से पीड़ित लोगों की मदद करने वाले कार्यकर्ताओं एवं दलों को कंधमाल मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कंधमाल के आदिवासी एवं दलित ख्रिस्तों के खिलाफ हिंसा के शिकार एवं उससे बचे लोगों के सम्मान में ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में 2 वार्षिक पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। पुरस्कार में कुछ राशि और स्मारिका प्रदान की जाएंगी। NSF के संयोजक डॉ. राम पुन्यानी ने कहा, गैर सरकारी संगठनों एवं समूहों के लिए पुरस्कार मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता, विकास, सद्भाव एवं शांति निर्माण के मुद्दों पर लंबे और निरंतर कार्य को मान्यता देने के लिए प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय एकात्मकता मंच एक राष्ट्रीय स्तर का मंच है, जिसका गठन कंधमाल हिंसा के बाद 2010 में किया गया था। NSF हर साल 25 अगस्त को कंधमाल, भुवनेश्वर, नई दिल्ली और अन्य जगहों में कंधमाल दिवस मनाती है। 2020 में महामारी के कारण इसे ऑनलाइन मनाया गया था, जिसमें हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के द्वारा सामना किए जा रहे चुनौतियों, खासकर जीवन, जीविका एवं धर्म तथा आस्था की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श किया गया था। वेबिनार की विषय वस्तु थी मानवाधिकार एवं घरेलू स्वतंत्रता की रक्षा। 23 अगस्त को हिंदू नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या ने 2008 की हिंसा को जन्म दिया था। भले ही माओवादी विद्रोहियों ने हत्या का दावा किया हो, हिंदू चरमपंथियों ने इसके लिए ख्रिस्ते लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया। 2 दिन बाद 25 अगस्त को ओडिशा के कंधमाल जिले के ख्रिस्तों पर नर्क टूट पड़ा था, जो महीनों तक बेरोक टोक जारी रहा। विडम्बना यह है कि इसकी शुरुआत भारत के स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद हुई थी। ख्रिस्ते विरोधी इस हिंसा में करीब 100 ख्रिस्ते मारे गए थे, उनमें से कई पुरोहित भी थे। करीब 75,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। 360 से अधिक गिरजाघरों, पूजा स्थलों, शिक्षा केंद्रों, सामाजिक केंद्रों और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था। करीब 12,000 बच्चों की शिक्षा बाधित हुई थी और लगभग 40 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। NSF ने कहा कि कंधमाल हिंसा बुनियादी मानवाधिकारों और सबसे कमजोर समूहों की गरिमा के कई उल्लंघनों का एक खास मामला है। न्याय होना अभी भी बाकी है और अधिकारों को बहाल किया जाना है। गंभीर मानवाधिकार चिंताओं और अफगानिस्तान में स्थिति पर जेनेवा में मानवाधिकार समिति की 31वीं विशेष सत्र में परमधम पीठ के प्रतिनिधि ने 2 मुख्य बातों, मानव प्रतिष्ठा का सम्मान एवं समावेशी वार्ता को रेखांकित किया। परमधम पीठ बड़े ध्यान और गहरी चिंता के साथ अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर नजर लगाए हुए है तथा 15 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस द्वारा जारी अपील को पुनः दोहराता है कि उनके साथ सभी लोग शांति के ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हथियारों का कोलाहल समाप्त हो तथा वार्ता की मेज पर समाधान प्राप्त हो सके। संत पापा ने कहा था कि सिर्फ इसी रास्ते से देश की कुचल दी गई जनता के पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बच्चे अपने घर लौट सकते हैं और शांति एवं सुरक्षा में पूर्ण आपसी सम्मान में जी सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।